रात काफी हो चुकी थी, सड़कें लगभग खाली थीं, और जब शामली की कार उसके छोटे से घर के सामने रुकी तो आसपास सिर्फ सन्नाटा था। दरवाज़ा खोलते ही हल्की सी रोशनी अंदर से बाहर आई। माँ अभी भी जाग रही थीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की आहट सुनी वो तुरंत उठकर बाहर आईं। आ गई तू? उनकी आवाज़ में चिंता साफ थी। शामली ने बस हल्का सा सिर हिलाया। अगले ही पल माँ ने उसे अपने गले से लगा लिया। वो पकड़ मजबूत थी, जैसे पूरे दिन की बेचैनी उसी एक पल में निकल रही हो। ठीक है ना बेटा? माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। वहाँ सब ठीक था? बस यही सवाल, और शामली की आंखें भर आईं। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ हल्की सी टूट गई। माँ, उसने धीमे से कहा, सब कुछ इतना मुश्किल क्यों होता है? माँ थोड़ा पीछे हटी, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। क्या हुआ? उन्होंने चिंता से पूछा। शामली ने नज़रें झुका लीं, कुछ पल चुप रहीं, जैसे शब्द ढूंढ रही हों। फिर धीरे से बोली, जिस पर भी भरोसा करो। उसकी आवाज़ और धीमी हो गई। वो आपका भरोसा तोड़ क्यों देता है? माँ एक पल के लिए चुप रह गईं। उन्हें समझ नहीं आया ये सवाल अचानक कहाँ से आया। उन्होंने बस उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसा नहीं होता हर बार, उन्होंने धीरे से कहा। शायद कभी कभी हम गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। शामली ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिलाया, जैसे उसने बात सुनी तो है लेकिन दिल तक नहीं पहुंची। चल पहले पानी पी ले, माँ ने उसका हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए कहा। घर के अंदर सब सो चुके थे, बस घड़ी की टिक टिक और हल्की हवा की आवाज़ थी। शामली ने पानी पिया, फिर चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। माँ कुछ पल उसे देखती रहीं, फिर धीरे से लाइट बंद कर दी। उस रात शामली बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसकी उंगली में वो अंगूठी अब भी थी, और हर बार उसे छूने पर उसे वही सब याद आ रहा था। हॉल का वो पल, अक्षरा की आंखें, विश्वनाथ की खामोशी और आर्यन की बात। उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई। माँ पहले ही उठ चुकी थी। शामली भी बिना ज्यादा सोए ही उठ गई। आज का दिन उसके लिए और भी जरूरी था। जल्दी तैयार हो जा, माँ ने कहा, हॉस्पिटल जाना है। शामली ने बस हूँ कहा और चुपचाप तैयार होने लगी। कुछ देर बाद दोनों मिलकर उसके पिताजी को संभालते हुए बाहर लाईं। उनकी हालत अब भी कमज़ोर थी, चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन आज इलाज शुरू होना था। ऑटो लेकर तीनों अस्पताल पहुंचे। वहां की भीड़, डॉक्टरों की आवाज़ें, स्ट्रेचर की हलचल, सब कुछ एक साथ चल रहा था। शामली ने रिसेप्शन पर जाकर बात की। एडमिशन करना है, फॉर्म भरे गए, डिटेल्स ली गईं। फिर सबसे ज़रूरी बात आई, डिपॉजिट। एक पल के लिए माँ ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार शामली के चेहरे पर घबराहट नहीं थी। उसने शांत स्वर में कहा, मैं अभी आती हूँ। वो जल्दी से पास के एटीएम की तरफ गई, मोबाइल पर बैलेंस चेक किया और एक पल के लिए उसकी उंगलियाँ रुक गईं। अकाउंट में पैसे आ चुके थे, इतने कि वो बिना सोचे इलाज शुरू करवा सके। उसे समझने में देर नहीं लगी ये किसने भेजे थे। विश्वनाथ। उसने हल्की सी सांस ली, ना खुशी ना हैरानी, बस एक शांत स्वीकृति। उसने पैसे निकाले और वापस अस्पताल आ गई। काउंटर पर जाकर पूरा अमाउंट जमा कर दिया। रसीद हाथ में लेते ही जैसे उसके कंधों से थोड़ा बोझ हल्का हुआ। अब आप पेशेंट को अंदर ले जाइए, स्टाफ ने कहा। कुछ ही देर में उसके पिताजी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर आए, चेकअप शुरू हुआ, टेस्ट्स लिखे गए और इलाज की प्रक्रिया शुरू हो गई। माँ की आंखों में अब थोड़ी राहत थी। सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने धीमे से कहा। शामली ने उनकी तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी नज़र फिर अपनी उंगली पर चली गई। वो अंगूठी अब भी वही थी, वैसी ही अडिग। जैसे उसकी जिंदगी में आई ये उलझन अब इतनी आसानी से जाने वाली नहीं थी। हॉस्पिटल के उस कमरे में जहां एक तरफ इलाज शुरू हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ शामली की जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी थी। कॉलेज का माहौल हमेशा की तरह शोर और हलचल से भरा हुआ था। कॉरिडोर में हंसी, क्लासरूम में नोट्स की खड़खड़ाहट और कैंटीन से आती चाय की खुशबू। लेकिन इन सब के बीच आर्यन जैसे कहीं और था। वो क्लास में अपनी सीट पर बैठा था, सामने प्रोफेसर कुछ समझा रहे थे, बोर्ड पर फॉर्मूले लिख रहे थे, स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे थे। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर की आवाज गूंज रही थी। लेकिन आर्यन के कानों तक कुछ भी साफ नहीं पहुंच रहा था। उसकी नजरें सामने थीं, लेकिन दिमाग वो तो पिछली रात में अटका हुआ था। वही सुनसान सड़क, वही शब्द आई लव यू, और फिर वो जोरदार थप्पड़। उसने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर ली। शामली का चेहरा, उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और वो एक लाइन, मुझे शर्म आ रही है कि मैंने कभी तुम्हें चाहा था। उसके अंदर जैसे कुछ चुभ गया। उसने हल्का सा सिर झुका लिया, हाथों की उंगलियां कस गईं। आर्यन, अचानक प्रोफेसर की आवाज तेज हुई। वो चौंक गया। हां सर, उसने तुरंत सीधा होकर कहा। अगर ध्यान इधर नहीं है तो बाहर जाकर ताजी हवा ले लो, प्रोफेसर ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा। क्लास में हल्की सी हंसी गूंजी। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस अपना बैग वहीं छोड़कर उठ गया और बाहर निकल गया। कॉरिडोर में आते ही उसे लगा जैसे सांस लेना थोड़ा आसान हुआ, लेकिन मन अब भी भारी था। वो सीधे वॉशरूम की तरफ चला गया। अंदर सन्नाटा था, बस पानी की हल्की सी आवाज। वो सिंक के सामने खड़ा हो गया और आईने में खुद को देखने लगा कुछ सेकंड। फिर उसने धीरे से नल खोला, हाथों में पानी लिया और चेहरे पर डाल लिया। ठंडा पानी, लेकिन दिमाग में चल रही आग को शांत नहीं कर पाया। उसने दोनों हाथ सिंक पर रखे और सिर झुका लिया। मैंने ये क्या कर दिया, उसने खुद से कहा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें पछतावा साफ था। वो याद करने लगा कैसे उसने उसकी बात सुने बिना जबरदस्ती की कोशिश की। उसने आंखें कसकर बंद कर ली। गलत था, उसने दांत भींचते हुए कहा, बहुत गलत। कुछ देर तक वो वहीं खड़ा रहा, बस सोचता रहा। फिर धीरे धीरे उसने सिर उठाया, आईने में खुद को देखा, इस बार थोड़ी दृढ़ता के साथ। ठीक करूंगा, उसने धीरे से कहा, सब ठीक करूंगा। उसने जेब से फोन निकाला, स्क्रीन पर उंगली कुछ पल रुकी, फिर उसने शामली का नंबर ढूंढा। नाम दिखते ही दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। उसने कॉल बटन दबा दिया, फोन कान से लगाया, रिंग जाने लगी। एक बार, दो बार, तीन बार, हर रिंग के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। उठाओ, उसने धीमे से बुदबुदाया, लेकिन कॉल कट हो गई। नो रिस्पॉन्स। उसने एक सेकंड रुककर फिर कॉल किया, इस बार रिंग भी नहीं गई। सीधा कट। उसने स्क्रीन को देखा, फिर हल्की सी कड़वी मुस्कान आई। ठीक है, उसने खुद से कहा, हक है उसका। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मैसेज टाइप करना शुरू किया, शामली प्लीज एक बार बात कर लो। कुछ सेकंड तक वो स्क्रीन को देखता रहा, फिर डिलीट कर दिया, फिर लिखा आई एम सॉरी, फिर रुका और ये भी डिलीट कर दिया। नहीं, उसने सिर हिलाया, ये सब फोन पर नहीं। उसने गहरी सांस ली, फोन जेब में रखा, सामने जाकर बोलूंगा। उसकी आवाज अब थोड़ी ठोस थी, लेकिन अंदर कहीं उसे यह भी पता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। वो कुछ सेकंड और वहीं खड़ा रहा, फिर सीधा होकर बाहर निकल गया। कॉरिडोर में वापस वही शोर था, लेकिन अब उसके कदमों में एक अलग सी चलती थी, जैसे वो खुद से भाग नहीं रहा था बल्कि कुछ ठीक करने जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ शामली का फोन अब भी शांत था, स्क्रीन ब्लैंक, जैसे उसने एक दीवार खड़ी कर दी हो। और उस दीवार के इस बार आर्यन खड़ा था, अपने किए के साथ, एक अधूरी बेचैनी के साथ ठहर गया।